नमस्कार भारत, तारीख 14 अप्रैल दिन बृहस्पतिवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर हर राजनीतिक दल उनकी विरासत और विचारों को अपना बताने में जुटा।
तीन तीन बार मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया, अंबेडकर जी का नाम ले लेकर वो दिन और रात मंत्र जाप करती थी। कुछ मूर्तियां और कुछ पार्क बन जाने से अंबेडकर की विचारधारा का प्रचार और प्रसार हो जाएगा? नहीं होगा।
कॉन्ट्रैक्ट खत्म, बकाया न मिलने के चलते 11 भारतीय नर्सें परिवार समेत लीबिया में फंसी, नहीं जानती वापसी कैसे होगी।
The Ministry of Health is now they are telling which government they are under, which government they also
know. अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाद मेघालय में कांग्रेस की सरकार पर खतरे के बादल, ले चलेंगे आपको नक्सलवाड़ी इलाके में, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर आज देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर के महू से ग्रामोदय से भारत उदय कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। महू डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मस्थान है। केंद्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी समेत कई दल डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। चरमपंथी संगठन बोको हराम ने नाइजीरिया की सरकार को एक वीडियो भेजा है। इसमें काले कपड़े पहने 15 लड़कियां नजर आ रही हैं। इससे जाहिर होता है कि करीब 2 साल पहले चिबोक से अगवा की गई 270 छात्राओं में से कुछ अब भी जिंदा हैं। ये मई 2014 के बाद से इन लड़कियों का ऐसा पहला वीडियो है जो सामने आया है। तब इस संगठन ने करीब 200 से ज्यादा लड़कियों का वीडियो जारी किया था और बदले में कैदियों की रिहाई की मांग की थी। छात्राओं की रिहाई न करा पाने को लेकर नाइजीरिया की सरकार को आलोचना झेलनी पड़ी थी। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि सीरिया में संघर्ष विराम जारी रखने के लिए अमरीका हर संभव कोशिश करेगा। CIA मुख्यालय में सीरिया के संघर्ष को लेकर ओबामा ने कहा कि राष्ट्रपति असद की सेना और नुसरा फ्रंट की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ है, लेकिन संघर्ष पर रोक के बाद लोगों की जान बची है और मदद पहुंचाई जा रही है। ओबामा ने कहा कि अमरीकी नज़रिया साफ है कि सीरिया की भविष्य की सरकार में मौजूदा राष्ट्रपति बशर अल असद के लिए कोई जगह नहीं होगी। ओबामा ने कहा,
Talks are now resuming in Geneva, and the United States will continue to do everything that we can to help the cessation succeed and to advance a political solution.
सीरिया संकट का राजनीतिक हल निकालने के लिए अमेरिका जो कुछ कर सकता है, हम वो सब कुछ करेंगे। सीरिया के सभी पक्षों को मिलाकर सरकार बनाना, नया संविधान कराना और स्वतंत्र चुनाव कराना इसमें शामिल है। सीरिया के तमाम लोगों की तरह अमेरिका का भी मानना है कि बदलाव की इस प्रक्रिया से असद को अलग रहना चाहिए। ये थे बराक ओबामा के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अमेरिका का कहना है कि रूस के एक सैन्य विमान ने बाल्टिक सागर में उनके युद्ध पोत के सिर्फ 9 मीटर ऊपर से उड़ान भरी। अमरीका के एक रक्षा अधिकारी ने इस हफ्ते हुई इस घटना को हालिया वक्त सबसे आक्रामक कार्रवाई बताया है। रूस का एक हेलीकॉप्टर भी कथित तौर पर युद्ध पोत के पास से गुजरा। अमेरिका का कहना है कि विमान ने रेडियो संदेशों का जवाब नहीं दिया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में उड़ान को उकसावे वाली कार्रवाई बताते हुए कहा है कि यह हादसे की वजह बन सकती थी। BBC समाचार।
BBC हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। आज भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती है। आज ही के दिन उनका जन्म 1891 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र में एक दिन पहले ही उनकी जयंती पहली बार मनाई गई। उनकी जयंती के मौके पर केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, विपक्षी कांग्रेस समेत दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने भी कई कार्यक्रमों के आयोजन किए हैं। नरेंद्र मोदी इंदौर के महू स्थित डॉक्टर अंबेडकर के जन्मस्थान से ग्रामोदय से भारत उदय कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव और उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए इन समारोहों को इन राजनीतिक पार्टियों की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि अचानक राजनीतिक दलों को डॉक्टर अंबेडकर क्यों लुभाने लगे हैं। इसी की पड़ताल करती सुशीला सिंह की रिपोर्ट।
संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती से पहले ही राजनीतिक पार्टियों ने अलग अलग कार्यक्रमों का ऐलान कर दिया था। कांग्रेस का कहना था कि वे बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा और उनके संदेश को गांवों, ब्लॉक, शहरों, राज्यों और राष्ट्रीय स्तर तक फैलाएगी और पूरे एक साल तक कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। तो वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विशेष जनसंपर्क अभियान चलाने की घोषणा की थी। इस बीच दिल्ली की आम आदमी पार्टी भी इससे अछूती नहीं दिखती और उसने आज राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है। कल कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जयपुर में दलित सम्मेलन को भी संबोधित किया। इन पार्टियों का ये कदम 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव और आगामी चुनाव को देखते हुए अहम बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश और पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां दलितों की अच्छी खासी आबादी है और ये आबादी नई सरकार को चुनने में अहम भूमिका निभाएगी। नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आने के बाद से ही डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर कई योजनाएं शुरू कर चुकी है। इस पर आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष कहते हैं,
जो बीजेपी दलित एकलव्य का अंगूठा कटवाने वाले द्रोणाचार्य के नाम पे गुड़गांव का नाम बदल के गुरुग्राम करती, जो बीजेपी हैदराबाद के अंदर एक दलित छात्र रोहित वेमुला को उनके मंत्री आत्महत्या के लिए बाध्य करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, वो बीजेपी अंबेडकर को आज अपनाने की बात कर रही, तो ऐसा लग रहा है जैसे गब्बर सिंह ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है और ये बहुत हास्यास्पद स्थिति है। ये सिर्फ लिप सर्विस करना है इनको और दलितों को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश उत्तर प्रदेश के रास्ते में करना है इनको।
बीजेपी खुद को दलितों का पैरोकार साबित करने की कोशिश में जुटी हुई है और जनधन योजना, बेटी बचाओ, स्वच्छ भारत अभियान को दलितों के उत्थान के लिए बताने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, हाल ही में प्रधानमंत्री ने दिल्ली से सटे नोएडा में स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें सरकारी बैंकों से महिला, दलितों और आदिवासियों को ऋण देने की बात कही गई थी। बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में एक मजबूत जनाधार है और दलितों के अधिकारों की वो जोर शोर से वकालत करती रही है। साथ ही डॉक्टर अंबेडकर की विरासत का खुद को सबसे बड़ा हकदार मानती है। बसपा का कहना है कि कांग्रेस ने कभी भीमराव अंबेडकर को सम्मान नहीं दिया और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां राजनीतिक फायदे के लिए अंबेडकर जयंती का इस्तेमाल कर रही है। CPI नेता अतुल अंजान,
जब भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार, इन्होंने 3-3 बार मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया और अंबेडकर जी का नाम ले लेकर वो दिन और रात मंत्र जाप करती थी, क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? क्या स्थिति बदली? क्या बना? कुछ मूर्तियां, कुछ पार्क बन जाने से अंबेडकर की विचारधारा का प्रचार और प्रसार हो जाएगा? नहीं होगा।
दलित लेखक कमल भारती का मानना है कि सभी राजनीतिक दलों का डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर अलग अलग एजेंडा है और पार्टियों का उनकी विचारधारा से कोई सरोकार नहीं है।
कांग्रेस का अलग एजेंडा है अंबेडकर को लेकर के, बहुजन समाज पार्टी का अलग एजेंडा है अंबेडकर को लेकर के, तो ये सब अपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए अंबेडकर को के प्रति उनका प्यार देख रहा है। अचानक नहीं है, इसके पीछे काफी गहरी इनकी बहुत बड़ा एजेंडा है।
हालांकि डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती पर राजनीतिक पार्टियां अलग अलग कार्यक्रम कर रही हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि ये पूरी कोशिश प्रतीकों को हत्याने की है। सुशीला सिंह, BBC दिल्ली।
हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश से बात की और पूछा, राजनीतिक दलों के लिए डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा कितनी मायने रखती है और क्या ये समारोह सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए है?
भीमराव अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन में जो राजनीतिक संदेश दिया, वो आज की जो मौजूदा राजनीतिक पार्टी सत्ता में है और जो उसको संचालित करने वाली शक्तियां हैं, उसकी विचारधारा के बिल्कुल उलट है। आज जो लोग उनको हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हैं, जो समाज में इस तरह का इंटॉलरेंस से बढ़ा है, बहुत सारे छात्र उत्पीड़न का शिकार बनाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप भीमराव अंबेडकर के विचारों को आगे ले जाना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। मुझे लगता है सत्तारूढ़ दल को उसको संचालित करने वाली जो मुख्य शक्ति है देश में, उसको अगर वाकई भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करनी है तो उन्हें अपनी विचारधारा में तब्दीली करनी पड़ेगी।
उर्मिलेश जी, यहाँ यही पूछना चाहेंगे आपसे कि 125वीं जयंती पर जिस तरह से बीजेपी कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, कांग्रेस कर रही है, वहीं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा कार्यक्रम रखा है, तो ऐसा क्यों है कि अचानक डॉक्टर अंबेडकर को लेकर इतनी आपाधापी मची हुई नजर आ रही है राजनीतिक दलों में?
जितने राजनीतिक दल हैं वो अपने निजी कारणों से, अपने पॉलिटिकल एजेंडे से प्रभावित होकर दलित जो इम्पावरमेंट की इस देश में राजनीतिक नई चेतना आई है उसको अपनी ओर मोड़ने के लिए मोबिलाइज करने के लिए, अपनी तरफ चैनलाइज करने के लिए सारा प्रपंच रच रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को, उनके दर्शन को, कांग्रेस पार्टी जो हिंदू कोड बिल के सवाल पर, जो उस वक्त हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग थे, लगभग कांग्रेस पार्टी का जो कंजर्वेटिव जो लीडरशिप कांग्रेस पार्टी में थी वो उनके साथ घुल मिल गई थी, और यही कारण है बाबा साहब ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। बाबा साहब को दो दो चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, कौन नहीं जानता है साथ में कि किन लोगों की वजह से ऐसा हुआ। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि भीमराव अंबेडकर ने स्वयं कहा था कि मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूं लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, और 1956 में अपनी मौत से कुछ महीने पहले उन्होंने लाखों लोगों के सामने बौद्ध धर्म को स्वीकार उन्होंने कर दिया था। तो एक तरह से पूरा जो उनका इंटेलेक्चुअल रिलीजियस डिस्कोर्स है वो बिल्कुल अलग है, जो पार्टियां आज उनको हड़पने की जैसे लगता है कोशिश कर रही हैं उनके विचार दर्शन को, उनसे बिल्कुल अलग है। ये बताता है कि हमारे देश में जो राजनीतिक दल हैं वो किस तरह का जुगुप्सा भरी सियासत कर रहे हैं।
आखिरकार अंबेडकर के पीछे हर राजनीतिक पार्टी क्यों भाग रही है, विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9835, 9915, 11995 और 15510 किलोहर्ट्ज़, और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। 11 भारतीय नर्सें अपने परिवार के सदस्यों के साथ लीबिया में फंसी हुई हैं। उनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो चुका है और अस्पताल से उनकी बकाया राशि का निपटारा भी नहीं हो पाया है। 25 मार्च को लीबिया की राजधानी त्रिपोली से 25 किलोमीटर दूर अल जाविया शहर के अस्पताल में रॉकेट से हुए हमले में भारतीय नर्स सुनू सत्यान और उनके 18 महीने के बेटे की मौत हो गई थी। इसके बाद अस्पताल में काम कर रही दूसरी नर्स अपने परिवारों के साथ किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिए गए। संघर्ष के मैदान में फंसी एक भारतीय नर्स ने हमारे सहयोगी इमरान कुरैशी से बात की और अपनी व्यथा सुनाई, सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
उनकी जिंदगी एक अजीब मोड़ पर रुक गई है। एक तरफ खतरा है और दूसरी तरफ उनका भविष्य है। खतरा इस तरह का है कि उनको यह भी पता नहीं है कि किसकी जंग चल रही है और किस लिए चल रही है। 2011 से वह सिर्फ अस्पताल और मरीज की देखभाल कर रहे हैं। उनकी नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट फरवरी की 19 तारीख को ही ख़त्म हो गया है, लेकिन उनको अभी तक ना तो रिलीविंग ऑर्डर दिया जा रहा है ना उनके हिसाब का अंतिम निपटारा किया जा रहा है। सुनिए 48 साल की निट्टी थॉमस की निराशा।
The Ministry of Health is now they are telling which government they are under, which government they also don't know.
उनकी स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसर कहते हैं कौन सी सरकार, बैंक कहती है कि उसके पास पैसा नहीं है, और यहाँ के अस्पताल डायरेक्टर कहते हैं कि हमारे से बात नहीं करना चाहते हैं, हमारे साथ तो कुत्तों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ये थे निट्टी थॉमस के शब्द। निट्टी थॉमस के साथ सिर्फ दूसरे नर्स ही नहीं बल्कि उनके बच्चे और कुछ लोगों के माँ बाप भी हैं। उनकी परेशानी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि सुनू सत्यन और उनका 18 महीनों का बच्चा रॉकेट गिरने की वजह से मर गए। उनके पास जो भी बचा कुचा पैसा है अब वो भी ख़त्म होने को है। हमने इन लोगों को वापस ले आने की बात केरला के मंत्री केसी जोसेफ से पूछा।
Many Indians, including many Malayali nurses, are held up in Libya even now.
हमारे पास तो बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने देश के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी बात की है। हमें पता है कि वहाँ रहना खतरनाक है, लेकिन हमें भरोसा है कि केंद्र सरकार इस मामले को गंभीर तरीके से लेगी। ये थे केसी जोसेफ के शब्द। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन नर्सों को अपना पैसा छोड़कर वापस आ जाना चाहिए। फिर एक और सवाल पैदा होता है कि उनकी देखभाल कौन करेगा। अगर उनको जितना पैसा विदेश में मिलता है वह उनके देश में ही मिल जाता तो नर्स का काम करने ये लोग देश के बाहर ही क्यों जाते। इसीलिए इन नर्सों की जिंदगी एक अजीब मोड़ पर रुकी हुई है। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
लीबिया में फंसी भारतीय नर्सों की दास्तां। रुख मेघालय का करते हैं। अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाद अब पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में कांग्रेस की सरकार पर खतरा मंडराता दिख रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री मुकुल संगमा पर कुछ विधायकों ने गैर आदिवासी होने का आरोप लगाते हुए उन्हें तानाशाह बताया है। पूरा ब्यौरा सुनिए असम से दिलीप शर्मा से।
बढ़ती गर्मी के साथ इन दिनों पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की राजनीति का तापमान भी काफी चढ़ा हुआ है। सत्ता में बड़ा बनने की होड़ में जुटे कुछ कांग्रेसी नेता मुख्यमंत्री मुकुल संगमा के खिलाफ कई तरीके से अपनी नाराजगी जता रहे हैं। अपनों के बीच घिरे मुख्यमंत्री संगमा पर आरोप लग रहे हैं कि राज्य में मेघालय कांग्रेस को अब मुकुल कांग्रेस बना दिया गया है। मेघालय के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश के पूर्व मंत्री फ्रैंकस्टीन डब्ल्यू मोमिन ने मुख्यमंत्री संगमा के खिलाफ नाराजगी जताते हुए शनिवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। फ्रैंकस्टीन नॉर्थ गारो हिल्स के दमदार नेता हैं और उनके साथ कांग्रेस के 9 और शीर्ष सदस्यों ने पार्टी छोड़ दी है। कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री के खिलाफ बढ़ती इस बगावत ने बीजेपी के लोगों को काफी सक्रिय कर दिया है। बीजेपी संगमा की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप मंड रही है। बीजेपी मेघालय के प्रवक्ता बासु चक्रवर्ती ने बीबीसी से कहा,
ऐसा बहुत लुका छुपी चल रहा है उनके अंदर में। जब तक ये ट्राइबल है तो फिर नॉन ट्राइबल कैसे आ गए? तो हमारे मुकुल संगमा जी की एक हिस्ट्री ऐसा है, वो पोर्टफोलियो के अंदर अंदर में एक बहुत ही गर्म लड़ाई चल रही है।
इससे पहले भाजपा प्रवक्ता और मेघालय के प्रभारी नलिन कोहली भी कह चुके हैं कि संगमा सरकार अपने स्वयं के अंत विरोधों के कारण अटक जाएगी, जबकि मेघालय विधानसभा में बीजेपी का एक भी सदस्य नहीं है। कांग्रेस में चल रहे अंदरूनी विवाद पर पार्टी विधायक फिलहाल खुलकर बात नहीं करना चाहते। मेघालय में बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पर स्थानीय पत्रकार दीपक वर्मा कहते हैं,
एक्चुअली क्या है कि मुकुल को इसके पहले भी 2-3 बार कोशिश किया गया हटाने के लिए इसके अपने पार्टी के तरफ से, जिसमें से इसका एक मिनिस्टर भी है देवगौड़ा नारायण, तो जिसकी वजह से इसकी दूरी बढ़ गई, लेकिन वो सफल नहीं हुए हटाने में। विरोधी काफी है लेकिन कुछ न कुछ अंदर में चल रहा है इनके अंदर की किसी तरह से, लेकिन नहीं हो पा रहे।
60 सीटों वाली मेघालय विधानसभा में कांग्रेस के 29 विधायक हैं, जो पूर्ण बहुमत से 2 कम हैं। प्रदेश में मेघालय यूनाइटेड अलायंस की सरकार चला रही कांग्रेस को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक और 11 निर्दलीय विधायकों ने बिना किसी शर्त के अपना समर्थन दे रखा है। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी गुवाहाटी।
मेघालय में कांग्रेस की सरकार पर बादल मंडरा रहे हैं खतरे के। और अब अखबारों की चर्चा कर लेते हैं। वात्सल्य अखबार पढ़ चुके हैं, वात्सल्य क्या कह रहे हैं आज के अखबार?
जी मोहनलाल जी, आईपीएल 9 का कोई मैच मई में महाराष्ट्र में नहीं होगा,
यानी कि 30 अप्रैल तक ही मैच होंगे।
जी, ये खबर जो है बड़ी प्रमुखता से सारे अखबारों ने छापी है। हाईकोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल इस बारे में अपना फैसला सुनाया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे अपनी लीड खबर बनाया है और हेडिंग दिया है आईपीएल आउट ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर 30 अप्रैल। दैनिक जागरण की लीड खबर भी यही है और हेडिंग भी मिलता जुलता है। आपको बता दें कि फाइनल समय 13 मैच जो है महाराष्ट्र के बाहर होंगे मई में। हिंदुस्तान और नवभारत ने भी इसी को लीड खबर बनाया है। इन मैचों को बाहर ले जाने की वजह है कि महाराष्ट्र में पानी की कमी है। अमर उजाला ने सेकंड लीड जो खबर अपनी छापी है वो इससे मिलती जुलती ही एक खबर है। इस खबर में बताया गया है कि सूखे की वजह से एक किशोर की पढ़ाई रुकी तो उसने आत्महत्या कर ली, ये मामला बांदा का है। नवभारत टाइम्स ने एक और खबर को बड़ी प्रमुखता से छापा है। इसमें बताया गया है कि कश्मीर के हंदवाड़ा में जिस लड़की के साथ कथित छेड़छाड़ को लेकर 2 दिन से तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसने बयान दिया है कि उसके साथ कोई बदसलूकी नहीं हुई है
और सेना ने बदसलूकी नहीं की।
जी, और इसका वीडियो भी सेना ने जारी किया है। कल दिल्ली समेत भारत के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। ये खबर भी अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने लिखा है कि 4 दिन में दूसरी बार हिला भारत,
लेकिन किसी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।
जी, एक अखबार ने दिया है कि असम में संभवतः 2 लोगों की जान गई है।
अच्छा
जी, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दैनिक जागरण ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने सबरीमाला मंदिर में सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई की खबर को भी प्रमुखता से छापा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर ट्रस्ट से जो सवाल पूछा था, अखबार ने उसे हेडलाइन बताया है कि बताएं पुरुष हिंदू महिला हिंदू में फर्क कैसे है। एनआईए के अधिकारी तंजील अहमद, जिनकी कुछ दिन पहले हत्या हो गई थी, उनकी पत्नी फरजाना की कल मौत हो गई और इसको भी ज़्यादातर अखबारों ने पहले पन्ने पर छापा है। और एक खबर मैं आपको बताना चाहूँगा, प्याज जो हमेशा कीमतों की वजह से खबर में रहती है, मध्य प्रदेश में 30 पैसे प्रति किलो प्याज मिल रहा है। दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी है।
बहुत बहुत शुक्रिया वात्सल्य राय अखबारों की समीक्षा करने के लिए।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
लाल सलाम ये नारा है नक्सलवादियों का। भारत में नक्सलवादी आंदोलन के सबसे बड़े गढ़ नक्सलबाड़ी के इलाके में इन दिनों चुनावी सरगर्मियां चरम पर हैं, लेकिन नक्सलबाड़ी के बुजुर्ग नेता लाल झंडे के बिखरने से दुखी हैं। हमारे सहयोगी सलमान रावी ने नक्सलबाड़ी का दौरा किया और वहां से हमें ये विशेष रिपोर्ट भेजी है।
ये वो जगह है जहां से मजदूरों और किसानों के विरोध का बिगुल बजा था। जी हाँ, बंगाल के दार्जिलिंग जिले का नक्सलबाड़ी अपने आप में संघर्ष का एक पूरा इतिहास संजोए हुए है। यही वो इलाका है जिसने लाल झंडे के प्रभाव को देश में दूर दूर तक फैलाने का काम किया और इस संघर्ष में कई जाने भी गईं। इसीलिए तो सभी कम्युनिस्ट पार्टी के गीतों में लाल झंडे के उन बरदारों को याद किया जाता है जिन्होंने मजदूरों और किसानों के संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाने में अपनी जान की कुर्बानी दी। लाल झंडे वालों में आपस में मतभेद हो गया और 1960 के दशक में कानू सान्याल ने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी की स्थापना की और उत्तरी बंगाल के चाय बगानों में काम करने वाले मजदूरों और किसानों के शोषण के खिलाफ संघर्ष को तेज किया। ये आंदोलन हथियारबंद संघर्ष में तब्दील हो गया और इससे जुड़े लोगों को नक्सली कहा जाने लगा। ये वो कम्युनिस्ट थे जो वोट की राजनीति को खारिज करते रहे, मगर बाद में कानू सान्याल ने हथियार बंद संघर्ष को खत्म करने की घोषणा की। कुछ साल पहले लंबी बीमारी से जूझ रहे कानू सान्याल ने आत्महत्या कर ली और नक्सलबाड़ी स्थित उनका मकान और कार्यालय अब एक स्मारक के रूप में खड़े हैं। पास की ही झोपड़ियों में 73 साल की शांति मुंडा रहती हैं जो आंदोलन से 13 साल की उम्र में ही जुड़ गईं। कई सालों के संघर्ष के बाद उन्हें लाल झंडे के बिखराव से काफ़ी दुख है। उन्हें यह भी दुख है कि 60 के दशक के अंत में जिन लोगों ने नक्सलबाड़ी आंदोलन से जुड़े लोगों पर जुल्म किए, आज लाल झंडे वाले वैसे ही लोगों के साथ गठजोड़ कर रहे हैं।
कांग्रेस और सीपीआई था, अभी तो दुनिया भर का पार्टी हो गया। अभी लाल पार्टी का आदमी लोग बोलता है जे हाथ में चिन्ह लो, देखते हैं ना। तो हम लोग का देश का कम्युनिस्ट लोग कैसा है, ये लोग कम्युनिस्ट है और कांग्रेस से हाथ मिलाया तो लोग किससे आज भारतवर्ष का जो यही दलाल बुर्जुआ का जो संविधान है, जो संविधान अभी तक चलता है, यही संविधान का लिए तो लड़ाई हाँ कि हम लोग परिवर्तन चाहते हैं।
एक एक कर शांति मुंडा अपने पुराने साथियों को याद करती है।
हमको पकड़ने नहीं सका, घर में तंग किया था कि कहाँ है, हमारा हस्बैंड था उसको बोलता था कहाँ है, तो घर में वो लोग नहीं ढूंढते।
तो आपको बोलते थे कि नक्सलाइट हो?
हाँ, हमको तो वार बंदूक को केस दिया था, साला बंदूक हम देखे नहीं किया कैसा बंदूक, हम कौन जोधार का बंदूक लेकर के छीनते किया।
यादों के बीच बात करते हुए हम नक्सलबाड़ी के एक और पुराने नक्सली नेता कबीराज राय के यहाँ पहुँचे।
शारुदा ने जब बोल दिया कि जब बरगद दुश्मन का खून से हाथ नहीं रंगाएगा तब तो कम्युनिस्ट नहीं रहेगा, उसी के चलते हम लोग का भी बात होने लगा। वहाँ पर हम लोग जाकर मैनेजर के ऊपर में हमला कर दिया, तब तो पुलिस का आक्रमण आगे उतना नहीं था पहाड़ पर। अब नहीं, वो लोग माओवादी लोग तो गलत रास्ता पर जा रहा है, जो जैसा कि चारू मजुमदार का गला काटा रास्ता था वही रास्ता पर वो लोग अभी भी है, लेकिन हम लोग को उस रास्ता को गलत, ये रास्ता गलत है। कानू बाबू का जो रास्ता था कानू बाबू ने साफ तौर पर कह दिया गलत रास्ता।
नक्सलबाड़ी में कानू सान्याल के ऑफिस के पास रहने वाले आदिवासी ग्रामीण कहते हैं कि जब तक वो जिंदा थे उनके गाँव में आने वाले लोगों का तांता लगा रहता था।
अभी देखते देखते अभी अभी तक बूढ़े होने लगा, अच्छा था वो रहने से ऑफिस पूरा चलता था, अभी गुजर गया तो बहुत यहाँ आदमी यहाँ घटता नहीं रहता।
इन्हीं में से एक भरत भी हैं जो 26 साल के नौजवान हैं। भरत कहते हैं कि अगर कानू सान्याल नहीं होते तो उनके खेतों पर भी पूंजीपतियों का कब्जा होता।
जब आप बोलते हैं कि मैं नक्सलवाड़ी का रहने वाला हूं, तो लोग क्या बोलते हैं, तुम नक्सल है, ऐसा बोलते हैं?
हाँ, नक्सल बोल रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि अभी जो केस चल रहा है, जो सुकाना दादा पहले गई थी जमीन सौंप दी जाए, फॉर्म क्या होगा, ऐसे कोरा दिया था, कहा चला गया, मर गया आदमी, कोरा जैसे कि दार्जिलिंग गए।
ये सब जमीन आपको मिली उनकी वजह से?
पूंजीपतियों और जमींदारों को मजदूरों और किसानों की एकता के सामने झुकना पड़ा और लोगों के अधिकारों को सरकारी मान्यता मिली, मगर ये सब कुछ जिस लाल झंडे की अगुवाई में हुआ उसमें काफ़ी बिखराव आ गया है और यही मलाल इस आंदोलन से जुड़े पुराने नेताओं को खाए जा रहा है। सलमान रावी, बीबीसी, नक्सलबाड़ी।
ये आवाजें नक्सलबाड़ी से आ रही थीं। और अब कार्यक्रम में उन खबरों की चर्चा जिन पर रहेगी आज हमारी नजर।
डॉक्टर आंबेडकर की जयंती के मौके पर रोहित वेमुला की मां और भाई मुंबई में बौद्ध धर्म अपनाएंगे। रोहित वेमुला हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र थे, उन्होंने जनवरी में खुदकुशी कर ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि उत्पाद बाजार मंच की शुरुआत करेंगे। इसके जरिए देश के 585 थोक बाजारों को जोड़ा जाएगा। पहले चरण में देश के 8 राज्यों की 21 मंडियां राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ी जाएंगी। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, गुजरात, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश। ई प्लेटफॉर्म किसानों को उत्पाद बेचने के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में मैरीटाइम इंडिया समिट की शुरुआत करेंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में 40 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में समुद्र संपदा के बेहतर उपयोग पर चर्चा होगी। पहले ब्रिक्स फ्रेंडशिप सम्मेलन की शुरुआत आज मुंबई में होगी। इस सम्मेलन में भारत के अलावा ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका और चीन के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव करेंगे। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। भारत प्रशासित कश्मीर के हंदवाड़ा में मंगलवार को सेना की फायरिंग के दौरान हुई मौतों के विरोध में आज अलगाववादियों ने बंद की अपील की है। फायरिंग के विरोध में कल भी बंद बुलाया गया था। फायरिंग और प्रदर्शन के दौरान हुई झड़पों में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की जिंदगी पर बनी फिल्म सचिन ए बिलियन ड्रीम्स का टीजर आज रिलीज होगा।
कार्यक्रम में अब बात करते हैं खेल की खबरों की।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूं राखी शर्मा। आईपीएल 9 में आज इस सत्र की दोनों नई टीमें राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और गुजरात लायंस टकराती दिखाई देंगी। ये मुकाबला राजकोट के मैदान पर खेला जाएगा। दोनों ही नई टीमों ने आईपीएल में जीत के साथ आगाज किया है। इस सत्र के पहले मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली पुणे टीम ने जहां डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस को हराया, वहीं सुरेश रैना की कप्तानी में गुजरात लायंस ने किंग्स 11 पंजाब को मात दी। और वहीं भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन के दूसरे दौर में जगह बना ली है। हालांकि पुरुष एकल मुकाबलों में एचएस प्रणॉय, अजय जयराम और के श्रीकांत अपनी चुनौती को पहले दौर से आगे नहीं ले जा पाए। एचएस प्रणॉय को चीन के चेन लॉन्ग 18-21, 21-18, 21-19 से मात खानी पड़ी। वहीं अजय जयराम को जर्मनी के मार्क ज़िब्लर ने 21-17, 21-16 से हराया। साथ ही लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे के श्रीकांत भी ताइपेई खिलाड़ी सू जेन हाउ से शिकस्त खाकर बाहर हो गए। साइना नेहवाल की गैर मौजूदगी में इस टूर्नामेंट के महिला एकल में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही पीवी सिंधु ने हालांकि जिम्मेदाराना खेल दिखाया। सिंधु ने पहले दौर में थाईलैंड की बुसानन ओब्रुमांग को 9-21, 21-17, 21-11 से हराया। दूसरे दौर में उनका मुकाबला चीन की हे बिंगजियाओ से होगा। इसके अलावा महिला डबल्स में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी भी पहले दौर से हारकर बाहर हो गई। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और आपको बता दें कि कल रात खेले गए मुंबई इंडियंस के मैच में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने जीत के लिए 188 रनों का लक्ष्य 20वें ओवर की पहली गेंद पर ही हासिल कर लिया और ये आईपीएल में मुंबई इंडियंस की पहली जीत है। इससे पहले कि कार्यक्रम में आगे बढ़े, मुख्य समाचार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। डॉक्टर बी आर आम्बेडकर की 125वीं जयंती पर आज देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इस बात की पुष्टि की है कि जीका वायरस से संक्रमित गर्भवती महिलाएं जिन बच्चों को जन्म देती हैं उनके सिर सामान्य से छोटे होते हैं। चरमपंथी संगठन बोको हराम ने नाइजीरिया की सरकार को एक वीडियो भेजा है। इसमें काले कपड़े पहने 15 लड़कियां नजर आ रही हैं। इससे जाहिर होता है कि करीब 2 साल पहले अगवा की गई 270 छात्राओं में से कुछ अब भी जिंदा हैं। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। अब आपसे मुलाकात होगी विश्व भारती कार्यक्रम में। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।